जीवन में गुरु धारण दो तरह से होता है। पहला तो सभी जानते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष, जिसको हम सतपुरुष कहते हैं या सदगुरु कहते हैं, जिसकी स्थिति मनुष्य वाली नहीं है, जिसकी स्थिति ईश्वर वाली है, जो खुद ईश्वर है। तो ऐसा शरीरधारी सदगुरु भाग्य से यदि किसी को मिल जाए और वो उसको अपनी शरण में मिले, तब इसको गुरु धारण करना कहते हैं। फिर जैसा गुरु कहता है, जो ज्ञान वो सिखाता है उसको, जो योग पद्धति सिखाता है या सिमरन सिखाता है, जैसा भी वो करने को कहता है, उसकी पूर्ण आज्ञा पालन करते हुए जब शिष्य गुरुमुख जीवन व्यतीत करता है, अर्थात गुरु के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, वो जिस वास्ते उसने गुरु धारण किया था, जिसको कहते हैं ईश्वर प्राप्ति, उस मंजिल तक उसके पहुंचने की गारंटी हो। ये प्रोसेस इस जन्म में भी पूरा हो सकता है, अगले जन्म में भी पूरा हो सकता है, लेकिन उसकी दिशा निर्धारित हो चुकी है और जिस गुरु ने उससे वायदा किया है या उसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखा है, जिसकी जिसको उस गुरु की कृपा प्राप्त हुई है, जिसका ग्रेस कहते हैं, तो वो अगले जन्म में भी उसकी प्रोटेक्शन करेगा और उसका मार्ग भी सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता रहेगा। दूसरा जितने भी लोग संसार में हैं, सबका ऐसा उच्च भाग्य नहीं होता कि शरीर रूप में ऐसे पूर्ण गुरु से उसकी भेंट हो सके। इसलिए जब संसार में ऋषि आते हैं, जैसे हमारा प्रारब्ध होता है, ऋषियों का भी प्रारब्ध होता है, उनको जो ईश्वर का हुक्म होता है उसके अनुसार उनका जीवन व्यतीत होता है, उनके द्वारा वचन उच्चारित होते हैं, उनके द्वारा वाणी प्रकट होती है, शास्त्रों की रचना होती है, जैसा उनका प्रारंभ, जैसा हुक्म ईश्वर का उनको हुआ है। जिस प्रकार महाराज जी के बारे में आता है जीवनी में, कि महाराज जी जब घर छोड़कर त्यागी साधुओं के साथ शामिल होने के लिए चल पड़े थे सियालकोट की ओर, तो लाहौर में उन्होंने ट्रेन बदलनी थी, स्टेशन के बाहर एक स्थान पर वो बैठे हुए थे। उस समय उनको अंदर आवाज आई या अंदर अनुभव हुआ कि तुझको कनफटे साधुओं में शामिल होने के लिए नहीं भेजा गया है, तुझको भूले भटके जीवों के का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। जब अंदर आवाज उन्होंने यह अनुभव की, तब वहां से वापस वो गंगोत्री आ गए और उसके बाद का जीवन आप सबको पता ही है। गांव गांव शहर शहर वो घूमते रहे, घोर जंगलों में तप करते रहे, वाणी प्रकट होती रही, समता विलास के वचन भी लिखे जाते रहे और लोगों से जिन जिन से कांटेक्ट हुआ, जिनके भाग में था, उनको उनके द्वारा दिशा भी प्राप्त हुई। परंतु महाराज ने कभी ये नहीं कहा ये गुरु केवल उन लोगों के लिए आए हैं जिनको इनसे दिशा प्राप्त हुई। उन्होंने तो यहां तक कहा सारे जगत के लोगों को संगत समतावाद जाने, दिशा लिए हुए दिशा ना लिए हुए लोगों में भेदभाव ना समझें। इसका मतलब गुरु शिक्षा का पूरा संसार अधिकार। जो व्यक्ति भी ऐसे पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन को समझने की कोशिश करता है, जो कि वाणी और वचनों के रूप में उपलब्ध हैं और उनके जीवन के रूप में उपलब्ध हैं, क्योंकि महाराज जी ने एक चीज और कही थी, प्रेमी इन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं लिखी जो अपने जीवन पर घटाई ना। इसका मतलब हर चीज जो उनके जीवन से सामने आई है, उनकी शिक्षा से सामने आई है, वो अनुभवी बात है, वो थ्योरी नहीं। इसीलिए ऐसा गुरु जो जगत गुरु है वो पूर्ण व्यवस्था करके जाता है, ईश्वर का उसको हुक्म होता है। इसलिए महाजी को देखिए 13 वर्ष आयु में महामंत्र प्रकट हुआ था। ये 13 अक्षर का जो महामंत्र है आप सब जानते हैं, जिसकी वाणी बाद में प्रकट हुई कि ये महामंत्र है क्या। उस वाणी में बड़ा स्पष्ट आया, पहला ही दोहा है उसका, त्रयोदश अक्षर मंत्रिये सर्व सिद्धि दातार जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाया पा। ये 13 अक्षर का मंत्र सर्व सिद्धि दातार है। और सर्व सिद्धि किसे कहते हैं? सिद्धियां तो हम बहुत जानते होंगे, किसी ने कोई चमत्कार दिखा दिया, किसी ने कोई आपकी इच्छा पूरी कर दी, हम कहते हैं उसको सिद्धि प्राप्त है, तो हमारी कामना पूरी कर सकता है। लेकिन सर्व सिद्धि दाता मंत्र, जिसके जाप करने वाले के अंदर ऐसी गुरु कृपा होती है, ऐसी प्रभु कृपा होती है कि सब कुछ सिद्ध हो जाता है। सब कुछ सिद्ध होने का मतलब जहां वासना ही खत्म हो जाती है, डिजायर ही खत्म हो जाती है, उसका नाम है, उस स्थिति का नाम है सर्व सिद्धि। जब वासना खत्म हो जाती है उस स्थिति का नाम ही है ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। वासना ही जीव का बंधन है और निर्वास होना ही जीव का मोक्ष। तो त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाया पा। जो इस मंत्र का प्रेम से सिमरन करेगा, प्रेम से मेडिटेशन करेगा, प्रेम से इसको रिमेम्बर करेगा, तो उसका अपार कल्याण। मंगल पाया पा, मंगल कहते हैं कल्याण, अपार कहते हैं लिमिटलेस। और जीव का लिमिटलेस कल्याण क्या है? मोक्ष, जिसको हम कहते हैं ईश्वर प्राप्ति या ब्रह्म स्थिति। जो इसको प्रेम से सिमरन करेगा, तो वाणी आपको डिवोशन की बात कर रही है। प्रेम कहते हैं भक्ति को, प्रेम कहते हैं डिवोशन को। याद रखिए प्रेम हमेशा लाइव चीज से होता है। फोन मेरे सामने रखा है, मैं इसको लाइक कर सकता हूँ, इसको डिसलाइक कर सकता हूँ, इससे प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम हमेशा लाइव चीज से, इसका मतलब ये मंत्र जो है वो लाइव है, ये लाइव गॉड है। तो ऐसे मंत्रों को ईश्वर कहा जाता है, ये खुद ईश्वर है। ऐसे मंत्र को गुरु कहा जाता है, ये खुद गुरु है, क्योंकि इसने आपको अंदर गाइड करना है, इसने ही आपको मोक्ष स्थिति तक पहुंचाना है। इसीलिए उपनिषद भी कह रहा है नाम ब्रह्मेति उपासते, नाम को अर्थात गुरु से जो प्रकट हुआ है, गुरु से जो प्राप्त हुआ है, नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए। गुरु कौन है? गुरु ब्रह्म है। जब मंत्र भी ब्रह्म है, गुरु भी ब्रह्म है, इसलिए महर्षि रमण कह रहे हैं कि गुरु कुंडलिनी मंत्र आत्मा एक चीज। रामकृष्ण परमहंस भी ये बात कह रहे हैं, वो कहते हैं मंत्र गुरु ईश्वर एक चीज। ये ऋषियों की बात है, शास्त्रों की बात है। इसलिए गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं मंत्रो अहम, मैं मंत्र। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, गीता में कहा गया नहीं? यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं स्वयं हूं। जप किसका होता है? मंत्र का होता है। जितने धर्म के नाम पे कर्म कांड है वो सब यज्ञ नाम से कहे, उपासना नाम से कहे। तो उन सारी उपासनाओं में जो श्रेष्ठ है वो जप है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, क्योंकि जो इच्छा रहित होकर ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार की पूजा करता है, चाहे वो यज्ञ के रूप में करे, चाहे वो मूर्ति के आगे प्रार्थना के रूप में करे, चाहे वो संध्या वंदना करे, किसी भी रूप में यदि वो ईश्वर से प्रेम करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने की इच्छा लेकर वो उपासना करता है, उसका विकास होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, मन उसका प्योरिफाई होता है। तो उसके ऊपर फिर अगली कृपा होती है कि प्रभु उसका निश्चय फिर मंत्र पर ला देना। तो इसीलिए मनुस्मृति में लिखा गया कि जो ये बाहरी उपासना है इसको हम यज्ञ कहते हैं, कहते हैं जब इससे 10 गुना श्रेष्ठ। मनुस्मृति में इसको बताया गया ये बाहरी उपासना से, यानी अंदर की जो उपासना है ये उससे 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, मन के ऊपर 10 गुना ज्यादा असर करता है। इसीलिए जो सारे ऋषियों की देन है वो वैदिक काल से चली आ रही है, वहां भी गायत्री मंत्र प्रकट हुआ है। ये जो आज के युग में ये वाणी प्रकट हुई है, आज के युग में ये मंत्र प्रकट हुआ है, और ऋषि का पूरा जीवन इस समाज के आगे, इस सोसाइटी के आगे ओपन हुआ है। तो ऋषि तो गुफा में भी सारा जीवन व्यतीत करके खत्म हो सकते हैं, लेकिन वो ईश्वर की लीला है, ईश्वर का हुक्म है। संसार की रचना ईश्वर ने की है, मनुष्य ने संसार की रचना नहीं की। जिसने रचना की है वही इसका मालिक है, वही हमारा मालिक है, वही हमारे दुख दर्द को समझता है। इसीलिए वो इसी धरती पर गुरु रूप में अवतरित होता है, हमारे दुख दूर करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। नहीं तो वाणी में ये बात क्यों आती, दुखी जीव की सुन पुकार सतगुरु आए जगत होता। इस दुखी जीव की पुकार सुनकर वो उसका इन दुखों से, जगत से उद्धार करने के लिए आए। तो जो जीव भी उन पर विश्वास करेगा, उनको गुरु रूप में अपने जीवन में अपनाएगा, उनके अनुसार साधना करेगा, उनके अनुसार परहेज करेगा, उनके अनुसार त्याग करेगा, तो एक दिन उसके जीवन में ऐसा जरूर आएगा कि वो जो अंतर्यामी आनंद रूप प्रभु हैं, ज्ञान रूप प्रभु हैं, जो शांति रूप प्रभु हैं, जिनको सच्चित आनंद कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है, तो उसका अनुभव उस जीव को या यूं कहें कि उस मनुष्य को जरूर होता है। इसीलिए उस संसार में फिजिकली जिसको गुरु मिल जाता है, तो सत्पुरुष से किसी की भेंट हो जाती है तो उसको भी ईश्वर की ही प्राप्ति होती है। जो उतना भाग्यशाली नहीं है, उतना पुण्य कर्म करके नहीं आया है, तो उसको फिर पूर्ण गुरु पर विश्वास आ जाता है। जैसे आप में से कितने लोग हैं, शायद आप में से किसी ने भी महाराज जी को नहीं देखा, परंतु उन पर विश्वास आपका आया है, इसलिए यहां बैठे हुए। और आप अपने अंदर कमी तलाश कर रहे हैं कि कौन सी कमी रह गई है जो दूर करूं कि अंतर्यामी प्रभु से भेंट हो जाए। जब आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहता गुरु के बारे में, डाउट रहता है तो अपने पुरुषार्थ के बारे में रहता है कि मैं ठीक पुरुषार्थ कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, मैं वाणी को ठीक समझ रहा हूं नहीं समझ रहा हूं, गुरु आज्ञा को ठीक समझ रहा हूं नहीं समझ रहा हूं। तो आप पूरी कोशिश करते हो, दिल से लगे रहते हो कि अपने जीवन को ठीक करने के वास्ते, और जिन वासनाओं में, जिन कल्पनाओं में, जिन इच्छाओं में आप फंसे हुए हो, धीरे धीरे उनके अंदर अपनी सामर्थ्य अनुसार सुधार करते हो, धीरे धीरे उनसे मुक्त होने की कोशिश करते हो। और जैसा गुरु कह रहा है कि प्रेमी जीवन इतना छोटा हो जाना चाहिए, इतना सीमित हो जाना चाहिए कि तेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जो जीने के लिए जरूरी है, परिवार पालन के लिए जरूरी है। क्योंकि बाहर का जितना चक्र जिसमें तू फंसा हुआ है, जो तेरे चारों तरफ इकट्ठा है, वो तो तेरा प्रारब्ध है, और वो प्रारब्ध के अनुसार बनेगा भी बिगड़ेगा, लेकिन प्रयास तुम्हें उस हालत में ही करना है। जो परिस्थितियां संसार की, देश की, समाज की, परिवार की, तेरे शरीर की हैं, वो तो प्रारब्ध है, इसीलिए तूने उन परिस्थितियों के अंदर रहते हुए ही ईश्वर प्राप्ति करनी। और ये काम लोगों ने करके दिखाया है। देखो महर्षि रमण बैठे हुए हैं गुफा में, बैठे हुए एक गृहस्थी आया उनके पास, कहता है कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मतलब उसका कहने का कारण मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, शादीशुदा व्यक्ति था, परिवार था, क्यों लेना चाहते हो? बोले ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है। तो महर्षि रमण कहते हैं ये काम तो घर रहकर भी हो सकता है, तुम संन्यास क्यों लेना चाहते हो? तो वो कहता है कि आपने भी तो संन्यास लिया। तो महर्षि रमण तो 70 साल की एज में, 9th क्लास के स्टूडेंट थे, घर छोड़कर अरुणाचल पर आ गए थे, उसके बाद गुफा में रहे, बाद में फुटेज में आश्रम बन गया रमणाश्रम करके, वहाँ रहने लगे। तो आप उसके दिमाग में ये बैठे हुआ था कि संन्यास लेकर ही ईश्वर प्राप्ति किया सकते। अब महर्षि रमण क्या कहते हैं, जो खुद 17 साल से सन्यासी घर गया ही नहीं कभी उसके बाद, वो कहते हैं तुम्हारे प्रारब्ध में परिवार में रहना है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो सन्यास ले ही नहीं सकते। मैं सोचता हूं मैं, मेरे पास फ्री चॉइस है, नकल करके जो प्रोग्राम डिसाइड करूंगा उस पर शारीरिक रूप से मैं वैसा जीवन व्यतीत कर सकता। इसीलिए यदि आप पर किसी ऋषि पर फेथ नहीं है, गुरु पर फेथ नहीं है, आप ऐसे अहंकारी बन जाते हो, देखो मैंने संन्यास ले लिया, इतना त्याग कर लिया, ऋषि कह रहा है, वही महर्षि रमण कह रहे हैं, जिन कर्मों को करने के लिए ये देह पैदा हुई है वो सारे कर्म इस देह से होंगे, तुम चाहो या ना चाहो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका मतलब हुआ देयर इज नो फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा नाम की वस्तु संसार में है ही नहीं। और मैं अपनी इच्छा का कितना अहंकार करता हूं, मैंने प्रण किया है मैं ये करके छोड़ूंगा। यदि तेरा प्रण सफल होता है इसका मतलब वो विल ईश्वर ने ही तेरे अंदर डाली है, क्योंकि तेरा प्रारंभ वैसा है। विल पलती है मन के अंदर, कर्म होता है शरीर से, इसलिए मन को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इस देह को स्थूल शरीर कहते हैं। तो मन और देह का कॉम्बिनेशन है, इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा था, कई लोग कहते थे मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, तो रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन कहा, उन्होंने कहा जब तक ईश्वर का हुक्म ना हो तो ईश्वर को मां करके कहते, जिसको मां का आदेश होता है वो प्रचार कर सकता है, उसकी बात सुनी जाएगी, बाकी लोग कितना ही बोलते रहें कितना ही कहते रहें दो दिन लोग बात सुनेंगे सब हो जाएंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नरेंद्र को मां का आदेश हुआ है, वो आदेश लेकर आया है, इसलिए ये प्रचार करेगा। उनको तो नहीं पता था कि अमेरिका जाएगा ये कहां जाएगा, घर में तो खाने के लाले पड़े हुए थे। घर में ये हाल थी जब विवेकानंद अमेरिका गए हैं, जब उनका वहां नाम हो गया, उनको अपॉइंटमेंट्स मिलने लगे कहीं लेक्चर के लिए कभी कहीं लेक्चर के लिए। वहां प्रथा थी भी जब किसी से लेक्चर करवाया जाता था कहीं हॉल के अंदर किसी जगह पर, तो अपनी तरफ से ही चाहे वो मांगे ना मांगे उसका जो मेहनताना होता है उसकी जो फीस होती है उसको दी जाती है, परंपरा है हर जगह। तो उस पैसे को वो अपने परिवार में भेजते थे, उनकी माँ थी, पिता का देहांत हो चुका था, भाई था, उनके गुजारे के लिए भेजते। विचार करो घर की परिस्थिति क्या है, खाने को नहीं, लेकिन आदेश हुआ है, प्रभु का आदेश है, ये शरीर वहीं वहीं घूमेगा जैसा कि आदेश, जैसा महाराज जी को आदेश हुआ, महाराज ने खुद कहा। तो ऋषियों की बात हवा में उड़ाने वाली नहीं होती है, इसीलिए ऋषि को ही पढ़ना पड़ता है, ऋषि से ही सीखा जाता है। यदि आपने सही सीखना है सोसाइटी के बारे में भी सही सीखना है तो वहीं से सीखना पड़ेगा। जैसे कि कल प्रश्न हो रहा था, जो समता भाव को धारण करते हैं वो राजा प्रजा सुख प्राप्त करते हैं, सुखी रहते हैं। तो क्या हुआ समता भाव, जो समता में या समभाव में स्थित है उसको सदगुरु कहते हैं, उसको ब्रह्म ऋषि बोलते हैं, उसको अवतार बोलते हैं। तो उसने जो मार्गदर्शन किया है, जीने का तरीका बताया है, जो उसके अनुसार जीते हैं वो लोग समता भाव को धारण करते हैं, उसके अनुसार जो जीते हैं दैनिक जीवन बनाते हैं, प्रभु उपासना का वक्त उनके पास होता है, जीवन का अंग होता है, जीवन का लक्ष्य होता है, इसीलिए ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं, सादगी से जीवन व्यतीत करते हैं, सेवा भाव से जीवन व्यतीत करते हैं, गुरु के वचनों को पढ़ने का महत्व समझते हैं। जितने भी ऋषियों के स्क्रिप्चर्स हैं वैदिक काल से लेकर जो भी हमको पता है उन पर कंसंट्रेट करते हैं, मन को एकाग्र करके उसके उसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अलर्ट कहां से हो गया, वो ईश्वर का मार्गदर्शन है, ईश्वर मेरा मालिक है। एक श्वास भी यदि वक्त आ गया तो मैं अपनी इच्छा से ले नहीं सकता, जब तक उसकी मदद मिल रही है शरीर को तब तक श्वास आ रही है। तो मेरा अहंकार कितना भी बढ़ जाए लेकिन मालिक ईश्वर ही, मेरा भी और सारे जगत का। इसीलिए पूर्ण गुरु का जब ये मनुष्य आसरा लेता है, जिसको हम कहते हैं कि अपने जीवन में पूर्ण गुरु को धारण करना है, उसकी शिक्षा के अनुसार चलने का प्रण लेता है, उसके मार्गदर्शन के अनुसार साधना करने का प्रण लेता है, उसके अनुसार पुरुषार्थ करता है, जीवन का शोध, दैनिक जीवन का शोधन करता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अंदर चीजें समझ में आती है, वो ये सीख जाता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं जीव हूं। क्योंकि गीता कह तो रही है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार ये जीव पुरानी देह त्याग कर नई धारण करते। और महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी एक देह छोड़ने में दूसरी देह धारण करने में क्या बीच में कोई टाइम गैप है, बीच में कोई अंतर होता है? तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जैसे जोंक जब चलती है उसकी चाल देखो, तो अपना मुंह जब जमा लेती है तब पीछे से पूंछ उठाती है, उसी प्रकार जीव के भाग अनुसार या जीव की कल्पना अनुसार नई देह उसकी निश्चित हो जाती है, तब पुराना देह त्याग करती है। ये दोनों चीज साइमल्टेनियस होती हैं, एक साथ होती हैं, बीच में टाइम गैप कोई भी नहीं। तो वैदिक काल से ये सिद्धांत चलाया, उपनिषद में भी आता है, तृण जलायु का एग्जाम्पल आता है, जैसे जोंक महाराज जी कह रहे हैं, जैसे रोए वाला कीड़ा होता है ना, इसको कमला कीट बोलते हैं हम लोग, तृण जलायु का, तिनके पर घास पर चलने वाला कीड़ा देखा होगा, रोए होते हैं, जब घास का एंड आ जाता है तो दूसरे घास के तिनके पर वो अपना मुंह रखता है, फिर अंगों को सिकोड़कर उसको उतार लेता है। उसी प्रकार ये जीव, इसके अंग कौन से हैं, इसकी इंद्रियां, मन बुद्धि जो कुछ भी हम कहते हैं, ये अंग हैं इसके जीव, जिसमें संस्कार, जिसमें डिसीजंस, जिसमें थिंकिंग पल रही है, जिसमें अनुभव पल रहे हैं इसके, जिसमें कर्म फल भी मौजूद है, जो नहीं भोगने नहीं भोगा है, जो अगले शरीर में भोगना है। तो जीव की लाइफ कंटिन्यूस है, देह भी उसकी कंटिन्यूस है। आज कहते प्रेमी जीव बिना देह के नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं रह सकता, जब तक जीव भाव है तब तक देह भी रहेगी, देह चाहे कीड़े की है चाहे वो मनुष्य की। इसीलिए ये जो गुरु भक्त है, ये जो गुरुमुख जीवन जिसने व्यतीत किया है, उसके अंदर पूर्ण निश्चय होता है, इस बात को गहराई से समझ लेता है, मैं जीव हूं। साधना में वो अनुभव करके देख लेता है कि मैं वो हूं जो मन के कारण परेशान है, मैं वो हूं जो इंद्रियों के भोगों के कारण परेशान है, मैं वो हूं जो देह के कारण परेशान है, मैं वो हूं जो संसार के कारण परेशान है, ये सब चीजें मुझसे अलग है, मैं इनके कारण परेशान हूं। इसलिए इन सब का संग छोड़ के वो ईश्वर का संग करता है, इस रूप में मंत्र रूप में। ये जीव का और ईश्वर का मिलन है जिसको मेडिटेशन कहते हैं। ये किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, ये सांसारिक प्रैक्टिस है, इसको सांसारिक प्रैक्टिस कहते हैं। किसी का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो उसे कहा जाता है एक ब्लैक पॉइंट को देखना सीख, वहीं ध्यान कंसंट्रेट कर, क्योंकि 100 विचारों में उसका ध्यान भटक रहा है, रेस्टोरेंट उसको याद आ रहा है, कहीं गेम उसको याद आ रहा है, उसको टेक्निक सिखाई जाती है एकाग्र होने की। तो ये एकाग्र होने की टेक्निक नहीं है, इसको मेडिटेशन बोलते हैं, ये एकाग्र होने की टेक्निक नहीं है, ये ईश्वर से मिलन है, ये सत्पुरुषों का विज्ञान, ये लाइव मिलन है। इसीलिए जब आपको सिमरन सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है, कहा जाता है कि तू सिद्ध मंत्र का जाना, सिद्ध मंत्र का मतलब है कि वो मंत्र जो खुद ईश्वर रूप है, ये तो इस मंत्र में इतनी ताकत, इस मंत्र की वाणी कह रही है कलह कलेश सब दूर है, इसमें इतनी पावर है कि मन के सारे कलह कलेश खत्म कर देते। पाए ज्ञान तत्व उस ब्रह्म का अनुभव करवाएगा, ब्रह्म के साथ एक कर देगा। मंगत तत् अक्षर, ये तत् अक्षर है, तत् कहते हैं ब्रह्म को, आत्मा को, ये मंत्र आत्मरूप है। मंगत तत् अक्षर नित गाय है, गाने का मतलब है मेडिटेशन से प्रभु दर्शन हो, ऐसे अंदर प्रभु का अनुभव। इसीलिए संसार का कोई भी व्यक्ति आज की डेट में भी ईसा मसीह को भी गुरु बना सकता है, मोहम्मद साहब को भी गुरु बना सकता है, महात्मा मंगतराम जी को भी गुरु बना सकता है, नानक को भी गुरु बना सकता है, राम को भी गुरु बना सकता है, कृष्ण को भी गुरु बना सकता है। जिसमें उसकी मन में श्रद्धा पैदा हो जाए, लेकिन गुरु बनाने का मतलब क्या हुआ? फिर उसने यदि कृष्ण को गुरु बनाया तो कृष्ण की पूजा नहीं करेगा, वो कृष्ण के गीता के अनुसार, कृष्ण के मार्गदर्शन के अनुसार वो ईश्वर प्राप्ति की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं मेरी श्रद्धा कृष्ण में है, मेरी श्रद्धा महात्मा मंगत राम में है, मेरी श्रद्धा कबीर में है। दुनिया उपासना शुरू कर देती है, करती नहीं, उनके मार्गदर्शन अनुसार जीवन नहीं बनाती, उपासना शुरू कर देती, इसीलिए ब्लैंक रह जाते। लेकिन फिर भी ऋषि कहते हैं यदि उपासना उसकी निष्काम है, संसार की इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं कर रहा है, ईश्वर दर्शन की इच्छा रख के वो उपासना कर रहा है, उसका तो कल्याण होगा। आगे का रास्ता प्रभु खुद खोलेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर देंगे, करवा देंगे जो उसको गुरु तक पहुंचा देगा, जो किसी पूर्ण गुरु पर उसकी श्रद्धा ले आएगा। सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, या उसके प्रति जैसा विश्वास होता है उसके माध्यम से, लेकिन उसका रास्ता इंप्रूव हो जाएगा। इस प्रकार वहां पर गुरु शिष्य रिलेशनशिप बन जाती है, उस व्यक्ति के अंदर ये हर समय भाव रहता है, जैसे हम लोगों के मन में है कि महात्मा मंगतराम जी हमारे गुरु, उनके अनुसार यदि मैं चला तो मेरा कल्याण निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये ना सोचें कि फिजिकली गुरु मिलने से ही गुरु शिष्य संबंध बनता है, उसकी शिक्षा पर चलने से गुरु शिष्य संबंध बनता है और जीवन सफल होता है। ओम धन सत्यम। Thank you.